Actually, the Purnima Tithi started yesterday.
वास्तविकता में पूर्णिमा कल शुरू हो गई थी.
According to GKL, the Purnima Tithi started yesterday.
GKL के अनुसार पूर्णिमा तिथि कल शुरू हो गई थी.
So actually Kartik starts tomorrow.
तो कार्तिक कल शुरू होगा.
People are following it today. Okay.
और पर सब आज से शुरू कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं.
There are five limbs of Kartik.
कार्तिक के पांच अंग हैं.
It's first is to give in charity.
पहला है दान देना.
You can give according to your shraddha to whoever is worthy of it.
अपनी श्रद्धा के अनुसार जिसको भी आप देना चाहें.
It can be any time during Kartik.
कार्तिक में किसी भी समय.
Or it can be all of Kartik.
सारे के सारे कार्तिक के समय.
You have to figure it out.
ये आपको खुद देखना होगा.
The other one is to offer a lamp.
दूसरा है दीप दान करना.
You can either offer to Tulsi or to Krishna.
तुलसी महारानी या कृष्ण किसी को भी आप कर सकते हैं.
And you should use tilka tail.
और आपको तिल का तेल यूज करना चाहिए.
And Hari Bhakti Vilas glorifies an akhand deep, a deep that doesn't go out.
Hari Bhakti Vilas akhand deep ko bahut gungan karta hai, aisa deep jo pure mahine jalta rahe.
The glories are described in Hari Bhakti Vilas chapter 16.
Inka mahima Hari Bhakti Vilas ke 16ve adhyay mein batai gayi hai.
And there are five limbs.
पांच अंग हैं.
Two of them we described already, that it would to give in charity and to give it deep down.
दो हमने पहले ही बता दिए हैं. पहला था दान देना, दूसरा दीप दान.
The other one is to have a vow according to your needs.
तीसरा है एक संकल्प लेना अपने आवश्यकता के अनुसार.
You push it a little bit, but you actually try to do it according to what you can do.
आप अपने आप को थोड़ा सा बल पुश करते हैं, लेकिन उसके अनुसार ही आपको करना चाहिए जो आप कर सकें.
Because Kartik means to be a bit more spiritual than you normally do.
कार्तिक का मतलब है कि जितना आप सामान्य रूप से आध्यात्मिक होते हैं उससे ज्यादा आध्यात्मिक होना.
So you try to be more spiritual.
तो आप प्रयास करें कि आप और आध्यात्मिक बन सकें.
The previous generation of devotees tried to be more spiritual during Kartik.
पिछली पीढ़ी भक्तों की पिछली पीढ़ी कार्तिक में और ज्यादा आध्यात्मिक बनने का प्रयास करती थी.
Now it is recommended to do Kartik in Mathura Junction.
और ये बताया जाता है कि कार्तिक को मथुरा में करना चाहिए, इसकी संस्कृति है.
But if those stuck in here in Delhi,
पर जो दिल्ली में हैं,
then they should go mentally to the.
उन्हें मानसिक रूप से मथुरा जाना चाहिए.
In Bhaktivinoda Thakur's commentary on Bhajan Shiksha, commentary on Mana Shiksha.
तो भक्तिविनोद ठाकुर जी की टीका मन शिक्षा में.
टीका. It's called Bhajan Darpan.
भजन दर्पण टीका में.
Then he describes in the first shloka.
पहले श्लोक में बताते हैं.
That the resident of the Dhamma means two.
दो प्रकार के धामवासी होते हैं.
Mentally and physically.
मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से.
By going mentally, you get the qualification to go physically.
मानसिक रूप से जाने पर आपके पास योग्यता आएगी कि आप शारीरिक रूप से भी जा सकें.
By reading Chaitanya Bhagavat or Chaitanya Charitamrita.
चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत पढ़कर.
Then you go to Navadvip without buying a plane ticket.
तो आप नवद्वीप पहुंच जाते हैं बिना प्लेन टिकट खरीदे.
And if you read Bhagavatam or Brihad Bhagavatamrita.
अगर आप भागवतम पढ़ें या बृहद भागवतामृत पढ़ें.
Then you go to Vrindavan without buying a plane ticket.
तो आप वृंदावन पहुंच जाएंगे बिना प्लेन टिकट खरीदे.
And that is actually what we should do.
और ये हमें करना चाहिए.
There are actually many stories of people who do it.
और बहुत सारी कथाएं हैं ऐसे भक्तों की जो ऐसा करते हैं.
And there's also stories of people who don't do it.
और ऐसे भक्तों की कथाएं भी हैं जो ऐसा नहीं करते हैं.
And what do they get?
और फिर क्या होता है?
And if they don't glorify Krishna during and they're staying in Vrindavan, then Bhaktivinoda Thakur says they're not staying in the dham but on the shore of the dham.
अगर कोई वृंदावन में वास करते हुए भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं करता तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वो धाम में नहीं बल्कि धाम के तट पर रह रहा है.
So that is another one.
तो ये दूसरा तरीका है.
मथुरावास. So basically there's described four.
तो अभी हमने चार अंगों के बारे में बताया.
The fifth one is जागरण.
तो पांचवा अंग है जागरण करना.
So I asked retired Sanskrit pundit, he's 92 years old.
तो मैंने एक 92 उम्र के संस्कृत पंडित से पूछा.
And he described how they did vigil in the old days.
तो उन्होंने बताया कि वो कैसे पिछले दिनों में करते थे.
So basically he said the king of Puri has headed it up.
तो वो कहते थे कि पुरी के राजा जागरण करते थे.
This means the manager should do it.
इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है उसे करना चाहिए.
And then he said something a little bit cultural.
तो फिर उनके करने से एक कल्चर स्थापित होगा.
To put, he put the king of Puri put a lamp on his head.
कि पुरी के राजा अपने मस्तिष्क अपने सिर पर एक दिया रखते थे.
So I said, what does that mean? That means sure sad that yum yum.
तो महाराज ने पूछा इसका मतलब क्या है?
What does it mean? I'm offering my head. What does it mean?
इसका मतलब है कि मैं अपना सिर भगवान को अर्पित कर रहा हूँ.
It means no. It's indirect. He said, if you fall asleep, it falls off on your cloth, and your wife will kill you. And even the king feared his queen.
नहीं इसका मतलब थोड़ा अब इनडायरेक्ट है कि अगर आप सो जाते तो फिर उनके जो दिया था वो उसके कपड़ों पे गिर जाता और अगर कपड़ों पे गिर जाता तो उनके जो पत्नी है वो उनको मार डालती. तो इसका मतलब ये है कि जो किंग भी अपनी क्वीन से डरते थे.
So they mentioned about that you don't count the people 11 PM. No, you count the people at 1 AM. They'll be with you for the whole time, and they're the most valuable people for your festivals.
तो जागरण के समय आप ये मत देखिए कि 11 रात्रि 11 बजे कितने लोग हैं. आप ये देखिए कि 1 बजे कितने लोग हैं, क्योंकि वही सबसे मूल्यवान लोग हैं जो आपके साथ पूरी रात्रि उत्सव मनाएंगे.
So there's a lot of festivals that happen here during Kartik.
तो कार्तिक में बहुत सारे उत्सव होते हैं.
The appearance of Radhakund happens.
Radhakund का प्राकट्य.
Now it's become a Karmakanda vichar. Before it wasn't.
अभी कर्मकांड विचार बन गया है, पहले ऐसा नहीं था.
25-35 years ago, the residents of Radhakund says wasn't like this.
25-35 years ago, राधाकुंड के निवासी इस प्रकार के नहीं होते थे.
Now to bathe in Radhakund or not to bathe?
तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हमें राधा कुंड में स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए.
सो प्रभुपाद गॉड ब्रदर इन 1996 ही वाज देयर.
श्री प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई 1996 में उधर थे.
सो ही एज वन रेजिडेंट राधा कुंड दैट Bhakti Siddhanta deserves what he taught but didn't bathe. And as far as I know, your Guru Maharaj didn't bathe. What makes you think you can?
तो उन्होंने पूछा कि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जी ने कभी राधा कुंड में स्नान नहीं किया, तो आप कैसे क्या आपके क्या विचार है इसके ऊपर?
So Guru Kripa described that in 1971 when Prabhupada finished the Delhi Pandal.
Guru Kripa जी ने बताया कि 1971 में श्रीला प्रभुपाद जी ने दिल्ली का पंडाल समाप्त कर लिया था.
Then Prabhupada went to Radhakunda with Shyamasundar Das and had both of them bathed.
और फिर प्रभुपाल शाम को श्याम सुंदर जी के साथ राधा कुंड गए और वहां पे स्नान किया.
So the actual thing is to not put your feet in the kunda.
तो वास्तविक चीज है कि राधा कुंड में अपना पैर नहीं रखना चाहिए.
So some people they take bath with a lota and a bucket.
और तो फिर कुछ लोग लोटे से अपना स्नान करते हैं.
The idea of the mentality is important.
तो मानसिकता ज्यादा जरूरी है यहाँ पे.
In 1976, I was one of the offenders.
1976 में मैं एक अपराधियों में से था.
So I know it well. I know it well.
तो मैं इसको अच्छे से जानता हूँ.
He said in 1975, Bhagavan Das has permission from Prabhupada, could we bathe?
1975 में भगवान दास जी को प्रभुपाद जी से आज्ञा थी कि हम राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं.
And Prabhupada gave permission, so we thought we didn't have to ask permission.
तो प्रभुपाद जी ने तब आज्ञा दे दी थी तो हमने सोचा कि हमको आज्ञा मांगने की जरूरत नहीं है.
We jumped in Radhakund and we swam like an Olympic swimming pool from one side to another, kicking and shoving as we went.
तो हम राधाकुंड में कूदे और बिल्कुल जैसे ओलंपिक्स में स्विमिंग करते हैं इस प्रकार से हम तैर के एक किनारे से दूसरे किनारे गए.
And then the news got back to Prabhupada.
और फिर ये खबर श्रील प्रभुपाद जी तक पहुंची.
And Prabhupada said, oh, they didn't swim in Radhakund, they swim in Narakunda. And so everybody was scared. They wouldn't touch Radhakund after that. They didn't swim in Radhakund, they swim in
Narakunda. तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि वो वास्तविकता में राधा कुंड में तैरे नहीं बल्कि नरक कुंड में तैरे जो कि नरक में होता है.
So everybody was scared.
And nobody bathed
in Radhakund after that.
और उसके बाद किसी ने भी राधा कुंड में स्नान नहीं किया.
So it really depends on mentality. You can bathe in Radhakund, but it really depends on mentality.
तो आप राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं पर ये आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है.
Those who have mentality can bathe, and those who don't, better not, they don't.
जिनके पास मानसिकता है वो कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो अच्छा होगा कि ना स्नान करें.
The Satsurup Maharaj mentions about it.
Satsurup Maharaj इसके बारे में बताते हैं.
He instructed his disciples, respect those who do and respect those who don't.
उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि आप जो स्नान करते हैं उनका भी आदर कीजिए और जो स्नान नहीं करते हैं उनका भी आदर कीजिए.
So a devotee in Radhakund as Prabhupada's godfather was the pramanam here.
तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी के गुरु भाई से पूछा कि इसका प्रमाण क्या है.
He said, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur did not bathe in Radhakund.
उन्होंने कहा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने राधाकुंड में स्नान नहीं किया.
He said, just like now, it's a big Karmakanda festival.
जैसे कि अभी एक कर्मकांड बन गया है.
They have some green pumpkins. They say, oh, we're giving one green pumpkin to you, Radharani, and my wife wants one green pumpkin there.
तो वो कहते हैं राधारानी हम आपको हरा पंपकिन दे रहे हैं तो मेरे पत्नी को
my wife wants
वो भी एक पंपकिन देंगे दीजिएगा.
And if Radhakund doesn't fulfill your desires, then you lose Shraddha in the Kunda. It will not be good. Best to put 3 drops in her head and don't ask so much.
और अगर राधाकुंड ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की तो आपकी श्रद्धा के लिए अच्छा नहीं होगा. तो अच्छा है कि राधाकुंड के 3 बूंदे आप अपने सिर पर रखें और ज्यादा मांग ना करें.
Because 3 drops of water is no different from bathing.
क्योंकि 3 बूंद रखना सिर पर लगाना स्नान से भिन्न नहीं है.
It is depending on mentality.
ये मानसिकता के ऊपर निर्भर होता है.
We are the servants of Radharani. The Kund is not all servants.
हम राधा रानी के दास हैं और राधा कुंड हमारा दास नहीं है.
Some people are really, really exhausted when they reach Radhakund Parikrama.
कुछ भक्त बहुत ज्यादा थक जाते हैं जब राधा कुंड तक पहुंचते हैं.
They're coming from Govardhan and they enter Radhakund and they're really tired and fried.
और गोवर्धन परिक्रमा करते करते बहुत थके हुए होते हैं राधा कुंड पहुंचते हुए.
So they put their foot in the kunda.
तो फिर वो अपना पैर कुंड में डालते हैं.
To try to relieve their fatigue.
ताकि उनकी थकावट दूर हो जाए.
So Radharani is not their servant. We are Radharani's servant.
तो राधारानी उनकी दास नहीं है, हम राधारानी के दास हैं.
So the appearance of Radhakund is described in Bhagavatam.
राधाकुंड का प्राकट्य भागवतम में आता है.
After Krishna chastised Keshi, then Vrindavan pastimes was over.
जब भगवान कृष्ण ने केशी को
अरिष्टासुर
का वध किया तो वृंदावन के उनके लीला समाप्त हो गए.
So then Vishwanath Chakravarti Thakur describes a humorous anecdote which is quoted in Bhagavatam 10th canto.
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक हास्यप्रद प्रसंग बताते हैं जो भागवतम में है.
It's basically 20 श्लोकस long.
ये 20 श्लोक में बताया गया है.
When I read it, I thought, we knew that the gopis were Radharani's servants, but this is really intense.
जब महाराज ने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि हम जानते थे कि गोपियां राधारानी की दासी हैं, लेकिन ये तो वास्तविक, ये तो वास्तविकता में कुछ अलग है.
The gopis were ready at night to go to bring water from 5 kilometers away at Manasikanga.
गोपियां बिल्कुल तैयार थी रात को भी मानसिकंगा से जल लाने के लिए.
That is really intense.
तो ये वास्तविकता बहुत गंभीर बात है.
It's a lot of hard work.
इसमें बहुत मेहनत का कार्य है.
So I thought, wow, the gopis were always famous as being servants of Radharani, but this is really a lot of work.
तो हम महाराज ने कहा कि ये तो हम जानते थे कि गोपियां राधारानी की दासी हैं, लेकिन अभी इस प्रकार की मेहनत उन्होंने राधारानी के लिए करी तो इससे और भी गंभीरता प्रकट हो रही है उनके दास से ही.
Kartik is famous for rendering service to Krishna. In the movie that Mother Yasoda bound Krishna's belly with ropes.
कार्तिक जो है इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि भगवान कृष्ण की सेवा की जाए उस भावना में कि जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के उदर को रस्सी से बांधा.
It actually happened on Diwali day.
ये दिवाली के दिन पे हुआ था.
So that is very interesting.
तो ये बहुत रुचिकर है.
There are many nice, there are two nice ekadasis on Kartik.
कार्तिक में दो अच्छी एकादशी आती हैं.
One is Ram Ekadasi, which is November 7th.
एक राम एकादशी है जो 7 नवंबर को आएगी.
And Uttam Ekadasi, which is November 24th.
और दूसरी है उत्थान एकादशी जो 24 नवंबर को आएगी.
The idea of it is Uttam Ekadasi is really good because the next day, Dwadasi, Dinabandhu Baba does the marriage of Shalagram and Tulsi.
तो इसमें से उत्थान एकादशी बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो अगली द्वादशी होती है उस दिन तीन बंधु प्रभु जी बताते हैं कि वो शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह का दिन है.
You can actually do it according to the Pramanam. You can do it in Vrindavan from Dwadasi to Purnima tak.
तो प्रमाण के अनुसार आप विवाह को द्वादशी से पूर्णिमा के बीच में कर सकते हैं.
But the Vrajavasi generally do it on Dwadasi tithi.
पर जो ब्रजवासी होते हैं वो सामान्य रूप से द्वादशी तिथि पर ही करते हैं.
So that is quite interesting.
तो ये रुचिकर है.
That festival is really interesting to see with your eyes.
उस उत्सव को अपने नेत्रों से देखना बहुत ही अच्छा लगता है.
It's mentioned in Hari Bhakti Vilas chapter 20.
ये हरि भक्ति विलास के 20वें अध्याय में उदित है.
I think it's 268 like that.
श्लोक 268.
I think so.
मुझे ऐसा लगता है.
It mentions about doing the marriage of Shalagram and Tulsi.
इस श्लोक में बताया है शालिग्राम और तुलसी के विवाह के विषय में.
It is basically an optional festival in ISKCON.
ये ISKCON में एक ऑप्शनल उत्सव है.
It is optional because Prabhupada never really instituted in our institution.
क्योंकि ये ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने कभी इसका सेलिब्रेशन नहीं किया.
It can be done if by householders if they want to do it.
ऐसा कर सकते हैं अगर कुछ गृहस्थ करना चाहें.
And naturally, it will destroy simple reactions.
और निश्चित रूप से ये पाप के फलों को विनाश करेगा.
Aside from the rituals that one does for Tulsi and Kartik.
जितने भी अलग और भी उपचार होते हैं जो तुलसी के लिए कार्तिक में किए जाते हैं.
It is actually better to practically do something on a daily basis.
ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ करें.
And that is actually really good.
और ये ज्यादा अच्छा रहता है.
Because Kartik Mahina is meant to make you more spiritual than you were before Kartik.
क्योंकि कार्तिक का मुख्य पर्पस ये है कि आपको और आध्यात्मिक बना दिया जाए जितना कि आप कार्तिक से पहले थे.
We actually should probably do it every single day.
हमें हर दिन करना चाहिए.
That is actually the best.
ये सबसे अच्छी है बात है.
Not only in the month of Kartik you should be spiritual.
केवल कार्तिक के महीने में ही हमको आध्यात्मिक नहीं होना चाहिए बल्कि
But you should probably be spiritual a lot more.
आपको और भी ज्यादा आध्यात्मिक होते रहना चाहिए.
That's the idea.
ये इसका विचार है.
If you had fun doing devotional austerities in Kartik.
और भक्ति की तपस्या करते हुए आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा कार्तिक.
Then just continue it.
और फिर इसको कार्तिक के बाद भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं.
And then next year you increase it a little bit more.
और फिर अगले कार्तिक में अपनी तपस्या और बढ़ाइए.
So about vows, you really think it a lot.
तो जो संकल्प आप लेंगे उसके बारे में आप बहुत सोच विचार कीजिएगा.
What you can do, and you think about it probably a week before Kartik starts.
और इस प्रकार ये क्या आप करेंगे इसका विचार एक हफ्ते पहले से ही करना शुरू कर सकते हैं जब कार्तिक शुरू होता है.
Because you have to maintain it, you can't break it.
क्योंकि आपको इसका पालन करना होता है. आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं.
It is not a knee jerk reaction. You're not reacting for it. It's not a knee jerk reaction. It means you're not doing something because you have to do it. You do something because you want to do it.
आप ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको करना होगा, पर आपको इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं.
So this is the description about Kartik.
तो ये कार्तिक के बारे में विवरण है.
So we have a lot of people.
तो आज हमारे यहाँ बहुत सारे भक्त हैं.
So we'll stop here for questions and answers.
अभी हम यहाँ पे विराम देंगे प्रश्न उत्तरों के लिए.
So who's got the first one?
तो किसका है पहला प्रश्न? तो प्रश्न है कि कार्तिक के महीने में ही दीप दान का क्या महत्व है अलग से?
We should do it because the acharyas say we should do it. Therefore, we should do it.
क्योंकि आचार्यों ने कहा है करना चाहिए, इसलिए हमें करना चाहिए.
And actually, they should read Hari Bhakti Vilas chapter 16 to understand a little bit more.
और आपको हरि भक्ति विलास के 16वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए इसके समझने के लिए.
Previously, lamps were the only illumination.
पहले के समय केवल दिए ही एकमात्र रोशनी का माध्यम होते थे.
You know, illumination was for cooking. Illumination was for warmth.
रोशनी के लिए खाना बनाने के लिए चाहिए जरूरत होती थी.
Like that. And, but so actually offering a lamp is really good for spiritual life.
तो वास्तविकता में एक दीप दान करना आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है.
But you don't really understand it now.
पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये.
Because the government is supplying electricity.
क्योंकि जो सरकार है वो आपको बिजली दे रही है.
You go to some village where there's no electricity.
आप एक ऐसे गांव में जाके देखिए जहां पे कोई बिजली नहीं है. वहां पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा इसकी महत्व.
But those that have electricity, a lamp is not so important.
पर जिनके पास बिजली होती है उनको दिए की महत्व समझ नहीं आता.
If you have no electricity, then a lamp is really good.
अगर आपके पास बिजली नहीं है तो दिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा.
So go to a village that has no electricity. Then you'll understand why it's important to offer a lamp to Krishna.
तो फिर आप एक ऐसे गांव में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिए के क्या महत्व है. और फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि दिया क्यों दिखाना चाहिए भगवान कृष्ण.
It's described in Shastra a lot.
शास्त्र में इसके बारे में बहुत बताया गया.
At least in Hari Bhakti Balas chapter 16, I think at least 5 shlokas mention it.
कम से कम 5 श्लोकों में हरि भक्ति विलास के 16वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया है.
Maybe more.
और ज्यादा भी हो सकते हैं.
I can think of 5 श्लोकस, maybe more.
मेरे को बस 5 भी याद आ रहे हैं पर ज्यादा भी हो सकते हैं.
So it's a little hard for us to think about it, but actually it's pretty big.
तो ये बहुत बड़ी बात है.
So we should do it.
हमें ऐसा करना चाहिए.
Not only because the previous acharyas did it, it's part of Bharatiya Sanskriti Jivan.
केवल इसीलिए नहीं क्योंकि हमारे पूर्व भारतीय आचार्य ने किया था, पर इसलिए भी क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है.
और कुछ?
और कुछ?
For your wonderful class. Maharaj, as you said in the lecture, in your class, that just like this month is known for Mother Yashoda binding Lord Krishna, and so his name comes Damodar, you also said that devotees should worship, serve Krishna in the same mood. So practically, how can we apply that statement? Which you said?
तो गुरुजी का प्रश्न है कि जैसे महाराज ने बताया कि ये जो मंथ, ये जो महीना है, ये भगवान कृष्ण को यशोदा मैया द्वारा बांधे जाने के भावना में इसका हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए. तो इस भाव में सेलिब्रेशन करने का क्या मतलब है?
It's described in Hari Bhakti Kalpalatika a little bit more.
इसके बारे में हरि भक्ति कल्पलतिका में अच्छे से समझाया है.
It said, Aho ma tora damna swayam swayam api sabato harimabhut swabhava premnoyam prabham api vashi karayati yad. Astonishingly, she bound up Krishna. You know?
ये बहुत आश्चर्यजनक है कि उन्होंने भगवान कृष्ण को बांध दिया.
He says, love has the ability to bring Krishna under control.
इसका मतलब है कि प्रेम में इतनी शक्ति है कि भगवान कृष्ण को भी नियंत्रित कर दे.
And actually the previous shloka is really good.
और इससे पिछला श्लोक अच्छा है.
It's in the 5th chapter of the book.
ये बुक के 5वें अध्याय में उदित है.
It says, even though Krishna's belly is not measurable by anybody.
इसमें ऐसा बताया गया है कि यद्यपि भगवान कृष्ण का उदर किसी के द्वारा भी मापा नहीं जा सकता.
Now how are we supposed to follow that? Achintya kaloye bhava natam starkena yojayat. If something is inconceivable, no use arguing about it.
तो ये अचिंत्य है कि कैसे इसको बांध दिया गया, तो इसके बारे में तर्क वितर्क करने का कोई भी फायदा नहीं.
Basically, it's Vatsalya Baba. It's love for mother for her child.
ये मुख्य रूप से वात्सल्य भाव है कि जिसमें माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है.
But it's a little bit extraordinary.
पर ये बहुत ही विशेष है.
It was described a little bit about that. I think in chapter 83 of Shrimad, of 10th canto of Shrimad Bhagavatam.
इसके बारे में थोड़ा सा विवरण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 83वें अध्याय में भी आता है.
When the residents of Vrindavan met the residents of Dwarka in Kurukshetra.
जब वृंदावन वासी द्वारका वासियों से मिलते हैं कुरुक्षेत्र में.
So it was described that Vasudev and Devaki met Yashoda and Nanda Maharaj there.
ऐसा विवरण आता है कि वहाँ पे वासुदेव और देवकी ने यशोदा और नंद महाराज जी से मुलाकात की.
And Balaram and Krishna sat on Mother Yashoda and Nanda's lap and cried.
और भगवान बलराम और कृष्ण यशोदा और नंद जी के गोद में बैठ के रोए.
And basically, then Devaki grabbed Vasudeva's hands. Look at this! Look at this! They never did this to us. They must not be our kids after all.
तो देवकी जी ने वासुदेव जी को बोला कि ऐसा देखिए, ऐसा कभी उन्होंने हमारे साथ नहीं किया, तो निश्चित रूप से ये हमारे बालक नहीं हैं.
It's interesting that that pastime happened. Because Mother Yashoda doesn't care that Krishna's God. He's her son, that's all.
Mother Yashoda ko isse koi farak nahi padta ki Krishna Bhagwan hai. Unke liye keval unke hi wo putr hain.
And basically that is the mood of Vrindavan.
To ye Vrindavan ka bhav hai.
The mood is that Krishna may be God, he may not be God. He is our Vrajavasi, we know him.
तो भाव ये है कि कृष्ण भगवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर वो हमारे ब्रजवासी हैं, हम उनको जानते हैं.
Our business is to love them, that's all.
हमारा एक कार्य है उनको प्रेम करना, केवल यही.
And they do so.
और वो ऐसा करते भी हैं.
ब्रजवासी do so, and so Krishna wants to stay with them, that's all.
और ब्रजवासी करते हैं ऐसा इसलिए कृष्ण उनके साथ रहना चाहते हैं.
When Krishna lifted Govardhan Hill, everything changed.
जब कृष्ण गोवर्धन हिल गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो सब बदल जाता है.
So the Vrajavasis thought, hey, are you going to show us Vaikuntha? Are we going to be liberated now?
पहले ब्रजवासी पूछने लगे, क्या आप हमको वैकुंठ दिखाएंगे, अब हम मुक्त हो जाएंगे क्या?
But they quickly forgot it.
वो एकदम से भूल भी गए.
Because Krishna made them forget it.
क्योंकि कृष्ण उनको भुला दिया.
It's basically Krishna makes all the Vrajavasis forget it, because in their love for Krishna they forget everything.
Krishna सारे व्रजवासियों को अपनी भगवत्ता के विषय में भुला देते हैं, क्योंकि उनका प्रेम है कृष्ण के प्रति, इसलिए वो भूल भी जाते हैं.
Sometimes Krishna has to show his opulence.
कभी कभी कृष्ण को अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है.
And really he doesn't like to do that in Vrindavan.
और वास्तविकता में उनको वृंदावन में ऐसा करना अच्छा नहीं लगता.
The coward boys that see Krishna drank the forest fire not once but two times.
ग्वाल बाल ने देखा कि भगवान कृष्ण ने दो बार दावाग्नि पान किया.
And Krishna told the coward boys, close your eyes.
कृष्ण भगवान ने ग्वाल बालों को बोला कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए.
And they said, okay.
सारे ग्वाल बाल बोले ठीक है.
And then Krishna drank the forest fire.
और फिर भगवान कृष्ण ने दावाग्नि पान किया.
Because the reason is that Krishna told the coward boys to close their eyes since he didn't want any witnesses. Nobody should tell my mother.
इसका कारण यह था कि कृष्ण भगवान ने उनको आंखें बंद करने के लिए इसलिए बोला, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि इसका कोई गवाही दे दे उनके माता को कि उन्होंने दावाग्नि पान किया.
Said, my mother went into pieces when she heard that I ate mud. Imagine what she's going to think if I ate fire. What is my mother going to think that? No one is. Nobody tell my mother I ate fire.
So, माता यशोदा जब उनको पता लगा कि भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो उसमें ही उनका इतना उनका हृदय टूट गया. तो अगर उनको ये पता लगा कि उन्हें आग भी खा ली, तो क्या होगा? तो इसलिए किसी को नहीं बताना कि मैंने आग खाई.
No witnesses. Nobody can see. Nobody told my mother that I ate fire.
इसका कोई गवाही नहीं देगा, कोई देखेगा नहीं, सब आंखें बंद कर लेंगे.
So that's interesting stuff.
तो ये बहुत रुचिकर है.
See, Krishna is known as Nishchinta. He doesn't have to think about it.
कृष्ण भगवान को निश्चिंत बोला जाता है, वो ज्यादा सोचते नहीं, सोचना नहीं पड़ता उनको.
Everything is under his control.
सब कुछ होने की सत्ता में है.
Except for two things, the anxiety of Mother Yasoda and the mind of Radharani. Everything is under his control.
केवल दो चीजों को छोड़ के सब उनके नियंत्रण में है, माता यशोदा की चिंता और राधा रानी का मान.
Other than that, everything is under his control.
इन दो चीजों को छोड़ के सब कुछ भगवान कृष्ण के नियंत्रण में रहता है.
So he's very concerned about those two things.
और इसीलिए वो इन दो चीजों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं.
Nobody should make my mother anxious and nobody should make Radharani disturbed at all.
कोई भी मेरी माता को चिंतित ना करे और कोई भी राधा रानी को परेशान ना करे.
Because it will cause nothing but trouble.
क्योंकि इससे केवल समस्या ही आएगी.
It says that the saying says that hell does not know anything but the wrath of a lady. Hell has not seen anything but the wrath of a lady.
तो ऐसे बताते हैं कि नरक में तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता, पर एक स्त्री के जो क्रोध है उसमें बहुत कुछ दिख जाता है.
Really heavy, you know?
तो ये बहुत ही भारी है.
So basically, our business is to whatever the ladies want to offer Krishna, we go, yeah, it's good.
तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी स्त्रियाँ चाहते हैं तो कृष्ण चले जाते हैं.
It's a lot easier for us. It becomes a lot easier for us.
तो ये हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है.
We may have our own thing, but it's real easy to tell. It's easier to tell the ladies, yeah, do whatever you like.
हो सकता है हमारे अपना कुछ मत हो, लेकिन अगर किसी स्त्री के साथ मतभेद हो तो हमें बोलना चाहिए ठीक है जैसा आप चाहें.
So our business is like when I took sannyas, then one devotee, Bhaktivedanta Purnamaraj, asked me, how will you understand the Gopi Bhava mantra, the sannyas mantra, the Gopi Bhava mantra?
तो महाराज जी का जो संन्यास होना था तो एक भक्त भक्ति विद्यापूर्ण महाराज जी ने महाराज से पूछा कि आप गोपी भाव मंत्र संन्यास मंत्र को कैसे समझते हैं.
So I explained it according to Sakya Bhava, what they would think.
तो मैंने इसे साख्य भाव के अनुसार समझाया कि सखा कैसे समझेंगे.
But he said, no, that's not correct.
उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये ठीक नहीं है.
He says, the mood of the gopis thinking of Krishna, we follow that in any relationship with Krishna.
तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण को जो गोपियां जिस प्रकार से विचार करती हैं, हम भी हर संबंध में उनका स्मरण इसी प्रकार से करते हैं.
और कुछ
कुछ और
हरे कृष्ण महाराज, you said you will have fun doing tapasya and kartik. Tapasya will be like a fun in Kartik, Maharaj. You will have fun doing the tapasya in Kartik. Tapasya, performing tapasya in Kartik will be like a fun. But tapasya means generally it's very difficult. So how we can perform tapasya in a funny way?
You happily do austere devotional experience.
तो ये का प्रश्न है कि महाराज ने कहा कि कार्तिक में तपस्या जो होगी आनंददायक होगी. तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि तपस्या तो सामान्य रूप से कष्टदायक होती है, तो आनंद कैसे प्राप्त होगा. तो महाराज कह रहे हैं
austerity doesn't have to be bitter austerity or bad austerity or difficult austerity.
तो उत्तर है कि तपस्या को कड़वा होना जरूरी नहीं है और आप खुशी खुशी तपस्या कर सकते हैं.
It should be pleasing austerity. We should do it for it's pleasing to do it.
हमें इसे प्रसन्न होकर करना चाहिए.
एंड एक्चुअली रिषभ देव टोल्ड हिज सन्स इट्स भागवतम 5:5:1.
ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बताया पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के पहले श्लोक.
तपो दिव्यं पुत्र का ये न सत्वम श्रुत्य तस्मात् ब्रह्म सौख्य त्वानंतम. माय डियर 100 सन्स,
मेरे प्रिय 100 पुत्रों,
you should perform divine austerities by which your nature will become purified and you'll taste happiness which is eternal and goes on unlimitedly.
आपको दिव्य तपस्या करनी चाहिए जिससे कि आपका स्वभाव शुद्ध होगा और फिर आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा जो हमेशा ज्यादा बना रहता है.
Your nature will become purified.
आपका स्वभाव शुद्ध होगा.
That's the only thing we forgot. Yeah, we should not be bitter about devotional austerities. We should do devotional austerities very happily.
हमको भक्ति की तपस्या के बारे में कड़वा नहीं सोचना चाहिए. हमें बहुत ही खुशी से भक्ति की तपस्या करनी चाहिए.
So you think, you know, what can I do that I can maintain the whole month and be happy about it?
तो आपको यही सोचना है कि आप ऐसे क्या तपस्या ले सकते हैं जो आप खुशी खुशी कर सकते हैं और पूरे महीने इसको कर सकते हैं.
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर ऑन द बिगिनिंग ऑफ द कार्तिक मंथ. महाराज, माई क्वेश्चन इज दैट समटाइम्स वी टेक वॉ रिगार्डिंग द ऑस्टेरिटी इन कार्तिक, बट इन बिटवीन वी फाइंड सम हेल्थ इश्यूज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू विद दैट वॉ. एंड एज यू सेड दैट यू हैव टू मेंटेन इट, यू कैनॉट ब्रेक इट. सो इन दैट केस वॉट विल हैपन टू दैट?
दूसरा प्रश्न है, प्रोजी का प्रश्न है कि हमको जैसे हम कभी कार्तिक में तपस्या लेते हैं या संकल्प लेते हैं तो बीच में तबियत खराब होने की वजह से उसका पालन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जैसे महाराज ने बताया था क्लास में कि हमें अपने संकल्प को बनाकर रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, तो इस केस में क्या होगा?
You wanna hear it?
क्या आप सुनना चाहते हैं?
You should not hear bad news. Sadhu should only give good news.
आपको बुरा समाचार नहीं सुनना चाहिए, साधु को सिर्फ अच्छे समाचार सुनाने चाहिए.
Read Hari Bhakti Balaj chapter 16 to find out what bad things will happen to one if you break your vow in the middle.
हरि भक्ति विलास के 16वें अध्याय का अध्ययन करके आपको पता लगेगा क्या क्या बुरा हो सकता है.
The point is we're making is that people should do obtainable things.
हमारा यही एक हम जो कहना चाहते हैं कि लोगों को यही करना चाहिए जो वो कर सकते हैं.
For sickness, then rules and regulations do not exist.
अगर कोई बीमार है तो उसके लिए नियम नहीं रहते.
Prabhupada's godbrother Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Maharaj told me that.
गोपाल जी के गुरु भाई भक्ति वैभव पुरी महाराज जी ने महाराज को ये बताया.
आचरण नियम न्यास्ते एट द टाइम ऑफ ट्रैवल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सस्पेंडेड.
यात्रा के समय नियम छोड़ सकते हैं.
बट आचरण मीन्स व्हेन यू आर सिक.
पर आचरण मतलब जब आप बीमार हो.
इन संस्कृत इट मीन्स व्हेन यू आर सिक, इट मीन्स नो एक्सक्यूजेस.
जब आप बीमार हैं
there's no excuses.
अब इससे कोई बहाना नहीं चलेगा.
Means you should do it anyway.
आपको करना ही होगा.
Just like not everybody is a pujari. If you're a pujari, you don't have an option. You have to do puja.
कि जैसे अगर कोई पुजारी है तो आपके पास विकल्प नहीं है, आपको पूजा करनी ही होगी.
If you can't do puja, then offer some puja items to Krishna and get the benefit that way.
अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो भगवान कृष्ण को कुछ पूजा की चीजें दे के आप उसका लाभ उठा सकते हैं.
That's the idea.
तो ये है उसका विचार.
But not everybody is a pujari.
पर हर कोई पुजारी नहीं होता.
Because pujari means a lot of work.
क्योंकि पुजारी का मतलब बहुत सारा कार्य.
So Krishna wants to steal that work. Krishna likes to steal that word.
भगवान कृष्ण को वो कार्य चुराना अच्छा लगता है.
So basically, our business is Krishna is a big thief, and our business is to help him steal.
कृष्ण बहुत बड़े चोर हैं और हमारा कार्य है उनको मदद करना. चोरी में.
Then Krishna will allow you to join the thievery party.
तो कृष्ण आपको चोरी के दल में शामिल कर लेंगे.
It's very interesting stuff.
ये बहुत ही रुचिकर बात है.
In Garga Samhita, there's a story that Krishna told the bell, "Don't ring."
Garga Samhita में एक कथा आती है जिसमें भगवान कृष्ण ने घंटी को बोला कि आप मत बजिएगा.
So Krishna stole the butter.
कृष्ण भगवान ने मक्खन चुरा लिया.
And then he was going to eat the butter, and the bell rang. Hey, what are you doing? I told you not to ring.
और जब वो खाने लगे तो घंटी बजने लगी तो भगवान ने कहा कि मैंने आपको बोला था नहीं बजना.
And he says, "Look, I'm just doing my duty. You know, when you feed God, you have to ring the bell, na."
मैं तो बैल ने कहा कि मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ. जब हम खिलाते हैं तो मुझे बजना ही होता है.
There's actually another story which I heard in the web, but when I asked Makkan Chordas in Vrindavan about that story, he never heard that story. So likely that story is bogus.
एक और कथा मैंने सुनी थी पर मैंने जब माखन चोर दास जी से वो कथा के बारे में कंफर्मेशन मांगा तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है तो इसलिए वो बोगस है.
इट मीन्स वी शुड गेट प्रमाणस दैट वी कैन वेरीफाई विद अदर्स.
तो हमें वही प्रमाण लेने चाहिए जो कि दूसरों के द्वारा कंफर्म हो.
इट्स मोर देन जस्ट हियरिंग अबाउट इट, इट्स कंफर्मिंग इट विद अदर पीपल.
केवल सुनना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको कंफर्म करना भी आवश्यक है.
और कुछ
व्हाट इज प्रभुपाद टेल डिवोटीज दैट हाउ शुड दे ऑब्जर्व कार्तिक व्हाट इज प्रभुपाद.
तो प्रश्न है कि प्रभुपाद जी भक्तों को क्या बताते थे कि कार्तिक का पालन कैसे करना चाहिए, प्रभुपाद जी के समय कैसे करते थे, क्या क्या तपस्या क्या क्या व्रत लेते थे.
He mentioned devotees should come to Vrindavan and Kartik to recharge their batteries, but he didn't tell us anything more.
उन्होंने कहा कि भक्तों को कार्तिक के समय वृंदावन आना चाहिए और यहाँ पे आके अपनी बैटरी चार्ज करनी चाहिए, पर इसके अतिरिक्त और ज्यादा हमने नहीं सुना.
he disappeared during Kartik. That's pretty good for us.
उन्होंने कार्तिक के समय तिरोभाव किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है.
That's interesting.
और ये रुचिकर भी है.
Because if you leave in Vrindavan, especially if you leave in Kartik month, you're definitely liberated.
कि अगर आप वृंदावन में तिरोभाव करते हैं और उसमें भी कार्तिक में तिरुभाव करते हैं तो आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे.
One god brother left his body on Vairunthani Ekadasi in Vrindavan.
एक गुरु भाई ने वृंदावन में वैरुथिनी एकादशी के दिन शरीर छोड़ा.
And he was really a Navadutta.
और वास्तविकता में वो अवधूत थे.
Because it takes one to know one. He was worse than me.
क्योंकि एक किसी को जानने के लिए हमें भी उस प्रकार का होना होता है. तो महाराज कह रहे हैं कि वो मुझसे भी बड़े झड़े थे.
So he had colon, he had leukemia, blood cancer.
उन्हें ब्लड कैंसर था.
So I thought, let me bring some goji berries from South Africa to help his cancer out. Goji berries.
तो महाराज ने विचार किया कि मैं साउथ अमेरिका से साउथ अफ्रीका से गोजी बेरी लाके उनके उनकी 6 किलो गोजी बेरी लाके उनके बीमारी की मदद करने का प्रयास.
See, now Emirates gives 46 kilos. Before they upped it 10 more kilos. It was 36 kilos, and I was sweating because I was tipping the scales at 43 kilos. What am I going to do? Previously, now it's 46 kilos. Previously it was 36 kilos. And I thought, where? I'm tipping the scales at 43. What am I going to do?
तो जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो उसमें 36 केजी का ही लगेज लेके जाने की अनुमति होती है. तो अब इसका 46 हो गया है, लेकिन पहले 36 ही था. तो महाराज को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इसकी वजह से 43 हो रहा था, तो महाराज समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे करेंगे, इसको लेके कैसे जाएंगे.
सो आई हैड अ टिकट थ्रू साउथ अफ्रीका टू मॉरिशस एंड द मॉरिशस सेगमेंट वाज ऑन एयर मॉरिशस.
तो महाराज जी के पास एक टिकट थी जो साउथ अफ्रीका से मॉरिशस जा रहे थे.
So the day before the flight, they kicked me off the flight.
Flight ke ek din pehle unhone mujhe flight se bahar nikal diya.
So I complained to Air Mauritius. How could you do that? I have a lecture to give in Mauritius University.
To unhone kaha ki aap aisa kaise kar sakte hain? Mujhe Mauritius mein lecture dena hai.
The next day, they put me back on the flight with a business class upgrade.
So agle din unhone business class ke saath mujhe bheja.
So I went to the airport 3 hours before and I checked in. Put the tags in the bag happily and they left.
तो मैं 3 घंटे पहले गया एयरपोर्ट पे और मैंने अपना भीतर घुसा और मैंने सारा लगेज दिया, तो उन्होंने मेरा लगेज भी रख लिया.
See, if you go late to the airport, then they may have trouble. But if you go early, then there's no trouble.
तो अगर आप एयरपोर्ट में लेट जाएंगे तो समस्या होगी, पर पहले जाएंगे तो नहीं होगी.
So then I thought, what to do in Mauritius?
तो फिर अब मॉरिशियस तक पहुंचने के बाद अब क्या किया जाए?
So I went to the check-in guy that was managing an Emirates station.
तो महाराज उस मैनेजर के पास गए.
I said, I have 6 kilos of goji berries for a person who's got cancer in North India. Put the tags in the bags.
तो महाराज ने बताया कि मैंने मेरे पास एक व्यक्ति के लिए जो जिसके पास कैंसर है भारत में, उसके लिए 6 किलो का कुछ दवाई है, तो फिर उनको अनुमति मिल गई.
So I felt pretty good. I thought Krishna's put the tags in the bag 2 times, so then it must be Krishna's will. So I was pretty happy about going to Vrindavan with the 6 kilos of goji berries.
तो 2 बार भगवान कृष्ण ने मेरी मदद की वो 6 किलो का एक्स्ट्रा लोड को लेके जाने के लिए, तो ये कृष्ण का ही इच्छा होगी, तो महाराज खुश थे इससे.
So then I gave it to my godbrother.
तो फिर मैंने अपने गुरु भाई को वो दी.
And he gave 5.5 back. I can't use it.
उन्होंने 5.5 किलो वापस कर दी.
So I was shocked. What is this? And I complained to Daddy Shakti Mata and I go, look, I tried to help his health and he refused it.
तो महाराज दैव शक्ति माता जी के पास जाके उन्होंने कंप्लेन किया कि मैंने उनकी बीमारी में उनकी सहायता करना चाहा, उन्होंने मना कर दिया.
She said, let him go, let him go, he'll be happy, we have to rot here for 30 or 40 more years.
तो उन्होंने कहा कि जाने दो उनको, जाने दो, वो खुश रहेंगे, हमें अभी यहाँ पे 30-40 साल और सड़ना है.
So I gave up. Okay, we let him die.
तो महाराज ने फिर छोड़ दिया, चलो ठीक है हम उनको जाने देते हैं.
Then in Bombay I went for Ram Navami festival and his villager is from them.
तो बॉम्बे गए हम रामनवमी मनाने.
So I said, hey, I tried to help his health.
तो वहां पे उनका गांव था, तो मैंने बोला कि मैंने इनकी मदद करने का प्रयास किया था.
And my godbrother goes, you don't know?
आप जानते नहीं?
No, I don't know.
तो उन्होंने महाराज ने कहा नहीं.
He didn't die of cancer, he died of AIDS.
वो कैंसर की वजह से नहीं मृत्यु हुई, बल्कि एड्स की वजह से हुई है.
How did he get AIDS?
How ऐसे कैसे हो सकता है?
Oh, before he became a devotee, he had a girlfriend, she gave it to him, he gave it to her, I don't know.
भक्त बनने से पहले ऐसा उनको एक उनकी गर्लफ्रेंड से एड्स मिला था.
So Krishna used their karma as an agent of change. Age is an agent of change.
तो भगवान ने उनका कर्म उनको बदलने के लिए इस्तेमाल किया.
So Krishna can change one's karma, but generally he doesn't.
तो भगवान किसी का कर्म बदल भी सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से नहीं करते ऐसा.
99% of the time he doesn't.
99% नहीं करते.
Krishna can change it if he wants to, but most of the time he doesn't want to.
Krishna, अगर चाहे तो कर सकते हैं, पर 99% समय वो नहीं चाहते.
Therefore, devotees use astrology a lot to check.
इसलिए भक्त बहुत ज़्यादा astrologers के पास जाके check करते हैं.
See, if you're a brahmachari, you just check it now and then.
अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो आप चेक करते रहिए बार बार.
If you're a householder, you have to check it practically daily.
अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको हर दिन चेक करना पड़ेगा.
When to start a business, when to have a child, when to get married, you have to check it really a lot.
कब बिजनेस कब शुरू करना चाहिए, कब संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, कब शादी करनी चाहिए, सब आपको चेक करना पड़ेगा.
It's interesting stuff. Because whatever is destined to happen will happen and cannot be otherwise.
तो ये जो होना है वो होता ही रहेगा, उसके विपरीत नहीं होता है कुछ.
This is described in Panchatantra 2.8.
ये भजन तंत्र 2.8 में बताया गया है.
What is destined to happen will happen and cannot be otherwise.
जो होना है वो होता ही रहेगा, उसके विपरीत नहीं हो सकता कुछ.
Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was a great astrologer before he became a guru.
जैसे कि श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे गुरु बनने से पहले.
So sometimes out of affection he would grab his brahmachari's hand.
कभी कभी बहुत ही प्रेम वश अपने ब्रह्मचारी का हाथ पकड़ लेते थे.
He would say, "You must get married."
आपको शादी कर लेनी चाहिए.
This is very interesting stuff. One should be really, really careful.
हर किसी को बहुत ही सावधान होना चाहिए.
Because we may get it. You may be very careful with what you desire because you may get it.
अपनी इच्छाओं से भी बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है पूरी भी हो जाए.
और कुछ?
हे कृष्ण महाराज, भक्ति का पांचवा बारे में तो जागरण का जो महत्व है, पूरा मंथ हमें करना चाहिए और कैसे फिर अपना अगले दिन हमें शेड्यूल मैनेज करना चाहिए?
There's a will, there's a way. There's no will, there's no way.
जहां चाहे वहां रहा है.
Oh, people would chant later on. They would be as spiritual as they could. They ate fruits. They did falahari for the whole month. They were as spiritual as they could.
Oh, आप फल फल पे रह सकते हैं और ज्यादा माला बाद में कर सकते हैं.
Buddhas or Buddhis are really good to ask these questions.
बूढ़े लोगों से ये प्रश्न पूछना ज्यादा अच्छा है.
Because they help you understand the past really good.
क्योंकि वो आपको भूतकाल समझने में मदद करेंगे.
Even if they didn't do it themselves, they at least know about the past.
चाहे उन्होंने खुद ना किया हो पर उसके बारे में जानते तो हैं.
They probably tell their stories about their what their grandparents told them about that.
और वो ऐसी कथाएं आपको सुना सकते हैं जो उन्होंने अपने दादा परदादा से सुनी थी.
Therefore, it's really it's like very difficult for us to understand it in our life, but there it's not difficult at all.
हमारे लिए समझना मुश्किल है लेकिन उनके लिए नहीं है.
Just like self Bhagavatam, it's think it's 15:10.
भागवतम में भगवत गीता के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में
यथान्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मानं वस्तुतः यथान्तो प्याकृत आत्मानं नयनं पश्यन्ति चेतसः.
तो ये जो श्लोक है वो या तो 10वां है 11वां है. यथान्तो योगिनश्चैनं
11. Yeah. See, it's very. Those who are interested in self-realization can understand this, but other people who are not situated cannot understand.
जो आत्मसाक्षात्कार करना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं समझ सकते.
So Kartik is very difficult to understand. Ask the old generation; they understand it better than us.
Kartik समझना बहुत मुश्किल है. पिछली पीढ़ी हमसे ज़्यादा अच्छा समझती थी.
Or Kush. It's time to stop. We'll do parikrama now.
तो हम परिक्रमा करेंगे.
And break for prasadam, those who want prasadam.
जिनको प्रसादम चाहिए वो प्रसादम के लिए जा सकते हैं.
One thing is for sure, do not do Govardhan parikrama from Ekadasi to Purnima.
ये एक चीज तो निश्चित है कि आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में गोवर्धन परिक्रमा मत कीजिएगा.
Because it is really difficult to get a spot.
क्योंकि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल पाएगी.
He said one resident of Radhakund during that time goes around the tongue of Govardhan.
एक राधाकुंड के निवासी गोवर्धन की जीव की परिक्रमा करते हैं वहां पे.
The Jivya Mandir, the temple of Govardhan. It's called Jivya Mandir, the temple of Govardhan.
The jeev hai, Govardhan ki jeev.
So he goes seven times around that and that's it.
और उसके सात परिक्रमा लगाते हैं और इससे गोवर्धन परिक्रमा लग जाती है.
So seven times around Govardhan, she does this 122 kilometer Govardhan parikrama without buying a plane ticket.
सात बार गोवर्धन शिला की परिक्रमा लगाना 22 किलोमीटर गोवर्धन पर्वतीय परिक्रमा लगाने के ही समान है. तो आपको बिना प्लेन टिकट के गोवर्धन परिक्रमा लगाने का फल मिलेगा.
We want to thank the devotees that have tolerated our existence for the last so many days.
हम भक्तों का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें इतने पिछले समय कुछ सहन किया.
We want to thank the devotees that have asked these questions today about Kartik.
और उन सही भक्तों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज ये कार्तिक के महत्व के ऊपर प्रश्न पूछे.
Hare Krishna.
Hare Krishna.